वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोपि सन्नय व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नय व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत आभ्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आभ्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
जन कर्म च मे दिव्य देवम्य वेत्ति तत्त्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम्य वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागत बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागत वसुदेवसुतं देवं
कंसचर्णोरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
निष्काम प्रेम और शोक निवृत्ति के उपाय दोनों विषयों पर बात चल रही थी तो निष्काम प्रेम तो बता दिया था, शोक निवृत्ति में प्रसंग चल रहा था। विचार करके देखना चाहिए कि भगवान हमें पुत्र देते हैं, स्त्री है, धन है, मकान है, रुपया है, ऐश्वर्य है, जो देते हैं यह एक साधारण दया है। लेकिन ये दी हुई चीजें भगवान वापिस ले लेते हैं तो ये भगवान की विशेष दया है। देते हैं तो कम दया है और वापिस लें तो अधिक दया है। ऐसे ही हमारा शरीर निरोग रहे तो भगवान की कम दया है, बीमार रहे तो अधिक दया है। पर हर आदमी इस बात के रहस्य को समझ नहीं सकता है, सुनते ही आश्चर्य करता है कि इसमें विशेष दया क्या हुई। घर में बेटा मर जाए, स्त्री मर जाए, धन चला जाए, मान चला जाए और शरीर में बीमारी आ जाए, ये जो सारी अनसुहावनी बातें हो जाए तो विशेष दया क्या हुई। तो विशेष दया यूं समझाते हैं कि पहले तो ये बताओ कि पुत्र, स्त्री, धन, आरोग्यता, मान, आदर, सत्कार, रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, ये पुण्य के फल से मिलते हैं कि पाप के फल से मिलते हैं। तो कहते हैं ये मिलते तो पुण्य के फल से है, तो ये पुण्य का फल भगवान ने दिया तो ये साधारण दया है। कि साधारण दया क्यों है कि हमने कोई कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उसके बदले में उन्होंने दे दिया, तो ज्यों ही उन्होंने हमको ये सब चीजें दी तब पुण्य का खाता बराबर हुआ कि नहीं, पुण्य का क्षय हुआ कि नहीं, तो ये पुण्य का खाता बराबर हो गया। भगवान के यहां एक पुण्य का खाता है, एक पाप का खाता है। आपने जो पुण्य किया था उस पुण्य के बदले स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य सब चीजें आपको दे दी तो खाता बंद। अनुमान लगाओ कि इन चीजों के मिलने के बाद दूसरे ही दिन तुम मर गए तो पुण्य का खाता तो बराबर हो गया और चीजें यहीं रह गई, और तुम रोते रोते यहां से चले गए, क्या लाभ हुआ। भगवान ने तुमको ये सब चीजें किस लिए दी थी? ये सब चीजें इसलिए दी थी कि इसके द्वारा तू मेरा भजन कर। इन चीजों के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे होती है कि जब भगवान के काम में हम इन चीजों को लगा देते हैं। हमने जो अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया, उसका फल भगवान ने दिया। अब हमारा क्या काम होना चाहिए था? भगवान ने तो अपना काम कर दिया। हमारा काम तो यही था कि हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं को ही सौंप देते, उन्हीं को ही समर्पण कर देते। इसमें एक प्रकार से हमारी बुद्धिमानी थी और उसी के लिए भगवान ने दिया, और इसका फल ये होता कि भगवान की प्राप्ति हमको मिल जाती। यदि रुपयों को भी भगवान के काम में लगा दे, शरीर निरोग है तो इसको भगवान के भजन में लगा दे, जो कुछ भगवान ने दिया उसको भगवान के काम में लगा दे, ये कितनी बड़ी भारी भगवान ने हमको ये वेला दी है, मौका दिया है, कैसी कृपा है। ठीक है, तब तो भगवान की कृपा का फल आपको मिल गया। भगवान ने हमको ये सब चीजें इसलिए दी थी कि हम इनका लाभ उठाएं, परमात्मा में इनको लगाएं। हम नहीं लगा रहे हैं। उस समय भगवान इनका विनाश कर देते हैं, छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अरे हमने तुमको ये चीजें दी, तुम इसी में ही फंस गए, और ऐसे ही फंसते रहोगे तो आगे जाकर दुर्गति होगी। इसलिए भगवान ने इनमें से चीजें जो छीननी चाहिए वो छीन ली। बेटा छीन लिया कि धन छीन लिया, स्त्री छीन ली, पति छीन लिया, छीन लिया। इसमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे पास से उसे हटा लेते हैं, ये भगवान की विशेष दया हुई। जैसे माँ बच्चे के हाथ से चक्कू है, कांच का टुकड़ा है, ये जबरदस्ती हटा लेती है, ऐसे ही भगवान हमारे शरीर में बीमारी भेजते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमने कोई पाप किया था, उस पाप के फल स्वरूप हमको बीमारी दी, हमको रोग हुआ, हम उसे भोग रहे हैं, और उसे भोग लिया तो हमारा वो पाप था वो नष्ट हो गया। जितना भी कष्ट मिलता है वो पाप के फल से मिलता है। उस कष्ट को हम स्वीकार कर लेते हैं तो पाप का भोग बराबर हो जाता है, हम पाप के ऋण से मुक्त हो गए। भगवान पापों से मुक्त करने के लिए संसार के दुख भेजते हैं। पितामह भीष्म जब सरसैया पर पड़े थे तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो पाप किए उनको आप रोग के रूप में भेज दीजिए तो मैं पाप के ऋण से मुक्त हो जाऊं, ताकि संसार में फिर जन्म होवे ही नहीं। भीष्म जी तो चाहते हैं कि हमने जो पाप किए उसका फल जल्दी से जल्दी इसी शरीर में भुगत करके बराबर हो जाए, दूसरे जन्म को क्यों आमंत्रण दे। वास्तव में ये पितामह भीष्म की बहुत बड़ी बुद्धिमानी थी, समझदारी थी। यदि पितामह भीष्म भगवान के सामने कोई मांग पेश करते तो भगवान शायद उनकी बात नहीं टालते, पर पितामह तो भगवान के भक्त थे ना, इसलिए वे मांग पेश करके भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि रोग के भोगने के समय में समझदार और शास्त्रों पर विश्वास करने वालों को ये बात याद आती है कि जो हम बीमारी भोग रहे हैं वो हमारे पाप का फल है, इसलिए हमको अब पापों से बचना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही पापों का फल आगे भी हमको भोगना पड़ेगा, तो भगवान हमारे लिए कितनी सावधानी भेजते हैं। सावधान होने का समय आता है। हम नए पाप करने में हिचकिचाते हैं, ये हमारे लिए कितने बड़े लाभ की बात है। तीसरी हमारे लाभ की बात यह है कि ऐश आराम में, भोग प्रमाद में हम भगवान को भूल जाते हैं और ऐश्वर्य के मद में चूर रहते हैं, और जब मार पड़ती है तब भगवान याद आते हैं। ये भगवान की दया है कि भूले भटकों को भगवान याद दिलाया करते हैं। जब मार नहीं पड़ती है तो भगवान कहाँ याद आते हैं। इसलिए भगवती कुंती देवी ने कहा कि संकट के समय में आपकी स्मृति विशेष होती है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में आपत्ति सदा ही बनी रहे। कहा है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिस सुख से भगवान की भूली होती हो उस सुख के ऊपर पत्थर पड़े, अर्थात मैं उस सुख को नहीं चाहता हूं। जिस सुख से भगवान की स्मृति पैदा हो उस दुख की बलिहारी है, अर्थात वह दुख बार बार आता ही रहे। एक तरफ दुख भोगना है और एक तरफ भगवान की याद है, तो भगवान की याद आने पर कितना ही दुख हो वह दुख आराम से सहा जा सकता है। विधवा माताओं का प्रकरण चल रहा था, उसमें हमने ये कहा कि जिनके पति मर गए उन्हें ये समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा हो गई, भगवान की इच्छा से ये बात हुई है, तो इसमें भगवान की दया छिपी हुई है। इस प्रकार भी नहीं समझ में आए तो ये सोचना चाहिए कि यदि पति जीवित होते तो लड़के लड़कियां होती, उनकी शादी में प्रपंच में पड़ा रहना पड़ता, घर में जवाई आता, लड़के की बहू आती, सास बहू में झगड़ा होता, रात दिन क्लेश में ही हमारा चित्त दुखी रहता, जवाई मर जाता तो घर में बेटी विधवा होकर रहती, उसका एक अलग से दुख होना पड़ता। इसलिए कितने दुखों से भगवान ने मुझे छुड़ाया है, अब हमको केवल भजन ध्यान के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। अपने आप को समझाओ कि अरे हार्ड मांस के पुतले, इस सांसारिक पति को क्या पति मां बनाती हो, परमात्मा को पति बनाओ ना। इस प्रकार से भगवान ने बड़ी दया की, वे अपने परम धाम में बुलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने मुझे विधवा बना दिया। तो जो स्त्री पति के मरने के बाद भगवान को अपना सर्वस्व मान लेती है और ये समझती है कि भगवान ही हमारे माता पिता गुरु स्वजन आत्मी सब कुछ भगवान ही है और भगवान ही हमारे पति हैं और भगवान ही सर्वस्व है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और ऐसे भगत को भगवान भजन में लगाने के लिए सभी रुकावटें दूर कर देते हैं। किंतु यदि उसने कोई लड़का गोद ले लिया, उसका विवाह शादी किया, स्वयं अपने ऊपर झंझट ले लेती है, तो उसका फल तो आगे उसे ही भोगना पड़ेगा। सेठ जी थे, उनकी एक विचारधारा थी, वो गोद लेने की परंपरा के पक्ष में नहीं थे। सेठ जी गोद नहीं लेते थे, गोद लेने के लिए मना करते थे। क्यों? क्योंकि तुम परिवार में फंस जाओगे भाई, भगवान का भजन करो। तो सेठ जी के घर में ही बात हो गई। तो सेठ जी पांच भाई थे, तो सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, अपने पांच आदमी जीवित हैं, अपने सामने संपत्ति का बंटवारा ऐसे करो कि लोगों पर भी अच्छा असर पड़े, क्योंकि सब घरों में बंटवारा तो होता ही है, अपने भी यहां बंटवारा होगा, तो ऐसे बंटवारा करना चाहिए कि सत्संगी लोगों का सत्संग है, उनका सत्संग में भाव बना रहे। तो करो साहब, अपन पांच हैं। सेठ जी, आप भाई जी सेठ जी बड़े थे कि भाई जी आप हमको जिस प्रकार से ही दोगे, हम सब के ऐसे नहीं कि नहीं, हम तो आप पर ही छोड़ते हैं। तो सेठ जी ने देखा कि भाई हम पांच भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा होगा तो सबको 20-20 पैसा मिलेगा, तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो सेठ जी ने क्या किया, सबसे छोटा भाई था उसको गोद ले लिया कि भाई देखो मेरे कोई लड़का तो है नहीं और मैं मोहन लाल को गोद लेता हूं। गोद लिया उसको। तो सेठ जी के भाइयों ने कहा, सबने और भी लोगों ने कि सेठ जी आप तो गोद लेने के लिए मना करते हो। कि मैं मना करता हूं पर मैं बहुत समझदारी से ले रहा हूं। कि सेठ जी हमको समझ में नहीं आया कि नहीं पहले पांती करो। अब पांती कितनी होगी, अब पांती होगी चार। पांच भाई थे तो एक एक को 20-20 पैसा पांती आएगा। अब एक भाई जब मेरे गोद में आ गया तो ये चार भाई रहे, अब सबके 25-25 पैसा पांती आएगा। तो कर लो पांती। तो 25-25 पैसा पांती करके फिर लोगों को समझ में आया कि सेठ जी ने देने के लिए गोद लेने का बहाना बनाया था, तब बाद में समझ में आया। तो कह दिया सेठ जी ने, लिखा कि यदि कोई लड़का गोद ले लिया फिर शादी विवाह किया, झंझट घर में पैदा हो गई, तो उसका फल तो उसी को ही भोगना पड़ेगा। अतः स्त्री को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति चला गया, पुत्र चला गया या पुत्र नहीं हुआ, ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। स्त्री ने तो पति को मारा नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं, ये घटनाएं अपने आप घट गई, भगवान की इच्छा से हुई, उसमें खुश रहना चाहिए। भगवान जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है, उसमें आनंद मनाना चाहिए और खूब भगवान से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद आई। एक समय भगवती पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, हे महाराज, आप भगवान के भक्त की प्रशंसा किया करते हैं तो मुझे भी कभी भक्तों का दर्शन कराओ। भगवान शंकर कहने लगे, प्रिय, तुम्हारी बात बहुत ठीक है, हम तुमको भगवान के दर्शन तो कराएंगे, परंतु तुम कुछ अपनी तरफ से बोलना नहीं, केवल देखते रहना कि जो आ गया। तो दोनों के दोनों एक वैश्य के पास गए, बणिए के पास। तो भगवान शंकर तो बन गए ब्राह्मण और पार्वती बन गई ब्राह्मणी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर के दोनों उस वैश्य के घर पहुंचे। वैश्य ने देखा कि कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी आए हैं, बड़ा आदर किया, सत्कार किया। उसके घर में दो एक बकरियां थी, उनका दूध निकाला और खीर बनाई, खीर पूड़ी बनाई, खूब सेवा की। भगवान शंकर और पार्वती जी ब्राह्मण ब्राह्मणी बनी हुई खूब छक्कर के भोजन किए और भोजन करके जाने लगे, तो भगवान शंकर ने जो ब्राह्मण बने हुए आशीर्वाद दिया कि जाओ वैश्य, तुम्हारी सारी बकरियां मर जाए। ऐसा सुनकर के पार्वती जी वगैरह सब आगे गए दोनों। तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गई। वो बोली, महाराज, आप कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हो, भक्तों की बड़ी प्रशंसा करते हो, कभी कभी भक्तों का नाम लेते लेते आप रोने तक लग जाते हो। बिचारे ने इतनी मेहनत से आपकी सेवा की, कोई इसके पास बहुत बड़ा पैसा भी नहीं था, लेकिन बिचारे ने कितनी दौड़ धूप करके आपको खीर बना करके खिलाई, पूड़ी खिलाई, कितना सम्मान किया, और आपने जाते जाते ये कह दिया कि तेरी सब बकरियां मर जाए, तो ये महाराज अच्छा नहीं लगा। इससे ब्राह्मणों की सेवा में कमी आ जाएगी, लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों की बाबा कौन सेवा करे, ये ब्राह्मण तो उल्टा पुल्टा साफ दे देते हैं, तो आपने तो सब ब्राह्मणों की सेवा में अड़चन पैदा कर दी। शिवजी बोलने लगे, देखो पार्वती, दिखने में तो तुम्हारी बात ठीक दिखती है और मेरी बात समझ में नहीं आ सकती, लेकिन इसका कारण अभी नहीं बताऊंगा, एक साल के बाद बताऊंगा, एक साल तक तुम ठहरो। पार्वती जी ने देखा, भाई अब क्या करें, कह दिया इन्होंने कि अच्छा साहब एक साल तक ठहरूंगी। एक साल बीत गया, पार्वती और शिवजी वहां जाकर देखते हैं कि वहां न तो उसकी स्त्री है न कोई बकरी है, वो बकरी स्त्री उस आदमी के सब मर गए, और वो वेश्य एकांत में बैठ करके और भगवान के भजन में मस्त रहता है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, पहले बार जब तुम आई थी, मैं भी आया था ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर के, तो कितना काम धंधे में लगा हुआ था, और अब देखो इसकी स्त्री मर गई, बकरियां मर गई, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बड़ी मस्ती से बैठा भजन ध्यान कर रहा है, और कैसा मस्ती से, कितना आनंद में ये बैठा हुआ है। अब बताओ, यदि इस समय बकरियां इसके पास होती तो दिखने में तो बात ठीक थी, लेकिन भगवान के भजन में ये मस्त रह सकता था क्या? तो उस समय की परिस्थिति अच्छी थी कि आज अच्छी है? पार्वती जी ने कहा कि बात तो यही ठीक है, जो भगवान के भजन में लगी रहने वाली परिस्थिति है वही बढ़िया है। तो बोलो, मैंने उस समय इसे श्राप दिया कि वरदान दिया, बताओ? मैंने इसके हित का काम किया कि अहित का काम किया? कितना हित किया है, अब इसके कोई झंझट नहीं, कोई बाल नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कुछ नहीं, सब झगड़े समाप्त, अपने दो समय टिकट बनाओ और भगवान का भजन करो। अब अपना भजन ध्यान करता है, हानि तो हमारे स्वार्थ की हुई है क्या महाराज? क्या रे, पहले हम आए थे तो कितनी खीर पूड़ी भोजन कराया, अब देखो हमको पूछा भी नहीं, इसने कुछ इसे कुछ पता भी नहीं। पहले तो सोचता था कि ब्राह्मण है, कुछ न कुछ हमको आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मण से कुछ हमको आशीर्वाद मिलेगा आशा थी, अब हमसे तो कोई आशा भी नहीं, तो उल्टा घाटा तो अपने घर में लगा। अब बताओ खीर पूड़ी कहां मिलेगी? लेकिन ये तो मस्त हो गया ना, यदि भगवान घर में सबका सफाया कर दे तो अकेला भजन ध्यान करे तो कितनी अच्छी बात है। ये बातें हमारी बुरी तो लगती हैं, परंतु परिणाम में बहुत अच्छी होती है। जैसे सुदर्शन काढ़ा बहुत खारा लगता है, परंतु जब वो पेट में जाता है तो वो बुखार को रहने ही नहीं देता है। ऐसे भगवान का विधान है, उसमें खुश रहना चाहिए। घर में कोई जन्म ले लिया तो भाई बहुत आनंद है, आनंद है, बहुत नहीं आनंद है, और कोई मर जाए तो बहुत आनंद है। देखो, जन्म जाए तो आनंद और मर जाए तो बहुत आनंद। शरीर में बीमारी पैदा हो तो अपने बहुत आनंद है, और शरीर मिट जाए तो और भी आनंद, बहुत आनंद। आनंद को तो कभी कम करके देखना ही नहीं चाहिए, आनंद को सदा कायम रखना चाहिए। आनंद तभी कायम रह सकता है जब कोई घटना हो तो उसे भगवान की कृपा समझे, भगवान का विधान समझे, और ये समझे कि ये भगवान का मंगलमय विधान है। भगवान की लीला देखो, इसको भी भगवान की लीला देखना चाहिए। जो कुछ अपने आप संसार में हो रहा है इसको भगवान की लीला समझना चाहिए। संसार में जो जन्म लेगा वो मरेगा तो सही। यहां बैठे हम सभी में कोई ऐसा नहीं है जो कभी मरेगा ही नहीं। कौन मरे, कौन कब मरे, 10 वर्ष में कि 20 वर्ष में कि 50 वर्ष में, इसका तो अपने को पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि 100 वर्ष के भीतर भीतर सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यदि कहो कि भविष्य की बात कैसे कही, तो हमने बहुत सोच समझ करके कही है, क्योंकि अब जितने वर्ष आ गए हैं इसके बाद अब 100 वर्ष किसको आना है, इतना वर्ष कोई थोड़ी जीते हैं। अब जैसे कोई 55 वर्ष का हो गया अब 100 वर्ष थोड़ी जिएगा, कोई 60 वर्ष का हो गया तो अब 100 वर्ष थोड़ी जिएगा, कोई 20 वर्ष का हो गया तो अब कोई 100 वर्ष थोड़ी जिएगा। अधिक से अधिक हमने 100 वर्ष बताए, बल्कि 100 वर्ष के बीच में ही आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए आप सबको ख्याल करना चाहिए कि जब सब मरने ही वाले हैं, कोई कल मरे तो कोई परसों मरे, कोई 2 महीने में मरे, कोई 10 वर्ष में मरे, तो क्या फर्क पड़ा, ये तो मरने वाले हैं। मरने वाली बात को बहुत साधारण समझना चाहिए संसार की दृष्टि से, और परमात्मा के भजन ध्यान की दृष्टि से बड़ी भारी हानि समझनी चाहिए। अरे ये हाथ, ये हमारे हाथ से समय निकल गया, ये मानव शरीर का समय निकल गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ के कुटुंबियों का रुपए ऐश्वर्य मकान आदि से आपका निश्चित वियोग होगा। जब एक दिन वियोग होना ही है तो रुपए गए तो क्या और मिल गए तो क्या। हम जाने ही वाले हैं तो कुछ मिल जाए कुछ न मिले, कुछ वियोग हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी अपने लोग बैठे हैं और जोर से भूकंप का झटका लगे, मकान गिर जाए, तो बताओ मरते ही सबका वियोग होगा कि नहीं। लाख जतन करने पर भी कोई चीज संसार में स्थिर रहने वाली नहीं है। मकान आदि जड़ या चेतन जिन पदार्थों के संबंध में आपका संबंध है, उन सब के साथ में संबंध विच्छेद होने वाला है। ये तो है प्रकृति का संबंध विच्छेद। आपने ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद नहीं किया, इसी कारण से दुख होता है। यदि आप ज्ञान पूर्वक समझदारी से इनका संबंध छोड़ दें तो कितने आनंद की बात है। भगवान आपका संबंध छुड़ा रहे हैं और आप पकड़ रहे हैं, उस पर भगवान की दया मानकर आपको खुश होना चाहिए कि अरे मैं किस मार्ग में जा रहा था, भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं मूर्खों के मार्ग में जा रहा था, भगवान ने समझदारी बताई, ऐसा समझ करके आनंद ही आनंद माने। नहीं तो इसके विपरीत मान्यता करोगे तो आपको दुख ही दुख होगा। यदि कोई चीज नष्ट होगी और आप उसका संयोग चाहोगे तो आपको दुख होगा। आप यहां से विदा होंगे, इनको छोड़कर जाएंगे, आपको दुख होगा। यदि पहले से ही इनसे स्नेह प्रेम हटाकर निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे तो आपको आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। जैसे टिकट कटाकर मनुष्य गाड़ी में बैठता है और अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है तो वो प्रतीक्षा करता है कि कब गाड़ी आए, कब हम बैठें, कब गाड़ी आए, कब हम बैठें। इसी प्रकार अपने तो सब काम बना करके मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आओ आने दो, मौत को आने दो, ऐसे प्रतीक्षा करो। घबराते हो, इसमें घबराने की नहीं है, तो प्रतीक्षा करने की बात है, तैयार होकर रहो। स्टेशन पर जैसे सब सामान लिए हुए आदमी टिकट कटाकर निश्चित होकर के निश्चिंत होकर के अपना रिजर्वेशन वगैरह सब देख करके वो केवल गाड़ी की प्रतीक्षा करता है और वो सोचता है कि मुझे अपने परिवार के वहां जाना है। ऐसे ही आप भी मृत्यु की प्रतीक्षा करो, मैं अपने परम मित्र भगवान के पास जा रहा हूं। भगवान के पास जाने की यात्रा है मृत्यु। तो जैसे गाड़ी जितनी जल्दी चलती है उतनी मन में खुशी होती है कि अब ये स्टेशन आ गया, अब ये स्टेशन आ गया, अब हमारा परिवार थोड़ा ही दूर है, अब थोड़ा ही दूर है। ऐसे सोचो कि बस अब मृत्यु आयुर् भगवान के वहां जाएंगे, हमारे परम मित्र, परम हितेशी, परम आत्मी, हमारे सर्वस्व भगवान, उनके वहां जा रहे हैं। ये यात्रा तो वो हो रही है आनंद की, आप व्यर्थ में ही दुख पा रहे हो। इसी प्रकार से ये जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं इन सब से संबंध तोड़ लेना चाहिए। जड़ पदार्थ क्या है? रुपया, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, सब जड़ पदार्थ है। इनका आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। भगवान के साथ हमारा संयोग हो जाएगा, फिर कभी वियोग नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं है। जिस चीज से अंत में वियोग होना है, आखिर में संयोग का त्याग ही करना है, उससे पहले से ही संबंध तोड़ लेना चाहिए। विचार के समय ही अपने को सुख दुख होगा, वह होगा, फिर भविष्य में कभी नहीं होगा। सारे संसार के पदार्थ दुख रूप और नाशवान है, इस बात को अभी समझो और गहराई से समझो। उनके साथ विचार करके अपना संबंध हटाओ और एकमात्र भगवान से ही प्रेम करो। फिर देखो आपको इस संसार में कहीं दुख नजर आएगा ही नहीं। इन पदार्थों के साथ हमने जो प्रेम किया है, ये हमारी बड़ी भारी गलती हुई और इसी गलती से हमारे सामने दुख आते हैं। ये हमको सावधान करते हैं, सावधान हो जाओ कि हम किनसे प्रेम करते हैं और किससे हमको प्रेम करना चाहिए। थोड़े दिनों की चीजें हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा प्रेम अनंत काल तक है। प्रेम तो उससे करो जो चीज स्थिर रहने वाली है, और वो प्रेम केवल परमात्मा से ही हो सकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो स्थिर रह सके। इसलिए परमात्मा को अपना मित्र मानकर उसके साथ प्रेम की यात्रा करने के लिए मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। रामा